आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में किया स्वदेशी मेले का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में ठंड पड़ी, सबसे कम तापमान राजगढ़ में दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। इनमें एक विशेष ट्रेन वाराणसी से मध्य प्रदेश के खजुराहो के बीच चलेगी। ये रेलगाड़ी प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो सहित अन्य प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी बनारस रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से बनारस स्टेशन से। पहली बनारस से खजुराहो, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर को जोड़ने वाली है, तीसरी फिरोजपुर से न्यू दिल्ली को जोड़ने वाली है और चौथी अर्नाकुलम यानी कोची वहाँ से बेंगलुरु को जोड़ने वाली है। इन चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं।
इससे पहले श्री मोदी कल शाम ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां शहरवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय प्रांगण में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेला परिसर में स्थापित प्रभु श्रीराम की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर श्रीराम स्तुति की प्रस्तुति भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अंग वस्त्रम और ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिकृति भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है।
स्वदेशी मेले का भोपाल में आयोजन ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ देश आगे बढ़ाओ अभियान का ही हिस्सा है। जब भारत में 2 माह तक आत्मनिर्भर देश आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का अभियान चल रहा है, ऐसे में भोपाल के अंदर इस प्रकार का आयोजन करना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। जब 23 बार की नौबत आ रही, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से न केवल इकोनॉमी बच रही है बल्कि भारत अपनी खुद की लाइन लंबी करते हुए स्वदेशी के बलबूते पर 145 करोड़ देशवासियों के साथ दुनिया के अंदर एक ताकत बन के उभर रहा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लघु उद्यमियों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और स्वदेशी उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रगीत का सामूहिक गान किया गया। ग्वालियर में भी देशभर के साथ उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम समारोह पूर्वक गाया गया। मंडला जिले में मैराथन दौड़ और सामूहिक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छिंदवाड़ा, खंडवा समेत अन्य जिलों में भी राष्ट्रगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर जिला पंचायत कार्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन कार्यक्रम आज से होगा। इसके बाद 10 नवंबर को नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा सभी नगरीय निकायों में वंदे मातरम गीत का गायन कराया जाएगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज 11 दिन की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ये प्रदर्शनी थिम्फू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का एक हिस्सा है। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा यह महोत्सव वैश्विक शांति और मानवता की भावना को रेखांकित करता है। इन अवशेषों को सार्वजनिक पूजा के लिए स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े विशाखापट्टनम नौसेना जासूसी मामले में 2 और आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है। विशाखापट्टनम की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 साल 10 महीने के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 5,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। एनआईए ने कहा है कि इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है और सजा सुनाई जा चुकी है। जांच के अनुसार दोनों व्यक्ति एक सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में आए थे। मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और मुकदमा जारी है। जीएसटी बजट उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। माल और सेवा कर जीएसटी की दरों में कटौती के साथ ये बजट उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ था। आज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जीएसटी की नई दरों से नागरिकों को कैसे लाभ हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने आवश्यक मशीनरी और खाद्य उत्पादों पर कर कम करके कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान की है, जिससे लाखों किसानों के लिए खेती अधिक कुशल हो गई है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरक संबंधी सामग्रियों पर अब 18% की बजाय केवल 5% जीएसटी लगता है, जिससे उर्वरक उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिली है। इसी बीच 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी को 12% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया है, जिससे मशीनीकरण और अधिक किफायती होने से किसानों को सीधा लाभ हुआ है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों पर भी कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कृषि में लाभ बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और पूरे भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। समर्थ और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दो अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। 13 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, वहां की संसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रदेश में गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं। इसके साथ ही ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता में अधिकाधिक भागीदारी के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल समत्व भवन में हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश में 7 से 25 नवम्बर की अवधि में ऑनलाइन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में अब ठंड पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, चंबल, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ और छतरपुर सहित कई जिलों में रात का तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसका असर प्रदेश में भी दिखने लगा है। फिलहाल प्रदेश में ठंडी हवाएं सक्रिय हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान राजगढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान सिवनी में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पहली बार भारत गोल्फ महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सांसद और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा और देशभर के गोल्फ खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। रीवा में आयोजित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अधिवेशन का मूल वाक्य आत्मबोध से विश्वबोध है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी के संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में शासी परिषद की कल एक बैठक आयोजित की गई। आगर मालवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश, स्थानांतरण, तैनाती को प्रतिबंधित किया है। देश में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में 3 दिवसीय इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2023 की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 9 नवंबर तक चलेगा। डिंडौरी में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डिंडौरी के निर्देशानुसार पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में खाद वितरण हेतु ई टोकन प्रणाली को 10 नवंबर से लागू किया जा रहा है। इसके लिए ई टोकन के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।